लेकिन ये सबसे बड़ा मॉल था। मॉल को देखकर आस्था की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे थोड़ी थोड़ी घबराहट भी होने लगी, क्योंकि इससे पहले वो इस मॉल में नहीं गई थी। ऊपर से उस मॉल में 6 से 7 फ्लोर बने हुए थे जो चारों तरफ फैले हुए थे। ये देखकर आस्था और भी ज्यादा डर गई, लेकिन फिलहाल वो अपने डर को इन सबके सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी। वो साथ ही थोड़ा असहज भी महसूस कर रही थी, क्योंकि इतने सारे आदमियों में वो अकेली लड़की थी। अब जैसे ही पांचों ने एक साथ प्रवेश किया, मॉल में जितनी भी लड़कियां थीं सबकी नज़र वहां ठहर गई। पांचों एक दूसरे से बढ़कर कपड़े पहने हुए थे, स्मार्ट और हैंडसम लग रहे थे। ऐसा लगने लगा कि अगर मर्दों में कोई सबसे ज्यादा खूबसूरत है तो यही लोग हैं जो अभी अभी मॉल में आए थे। सभी लड़कियां जो शॉपिंग करने आई थीं रुक रुक कर उन्हें ही देखने लगीं, और उन सबके बीच से जैसे ही उन लड़कियों की नज़र आस्था पर गई तो सबका मुंह बन गया। कुछ लड़कियां सोचने लगीं कि कितनी किस्मत वाली लड़की है, 5 हैंडसम लड़के उसके साथ हैं। वहां एक लड़की की नज़र अचानक आस्था के कपड़ों पर गई। आस्था जब मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी तब उसके घुटनों से थोड़ा सा खून निकला था। हालांकि वो खून अब सूख चुका था, इसलिए किसी का ध्यान उस पर नहीं गया था, लेकिन वो लड़की बारीकी से आस्था को देख रही थी, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि इतने हैंडसम लड़कों के साथ इस मामूली सी लड़की का क्या लेना देना है। आस्था के कपड़े काफी ज्यादा मामूली लग रहे थे, इसलिए वो लड़की अंदाजा लगा रही थी कि ये जरूर कोई नौकरानी होगी। जो लड़की आस्था को देख रही थी वो कोई और नहीं बल्कि अरमान सिंघानिया के ऑफिस में काम करने वाली मिस मलाइका थी। मलाइका को अरमान पर क्रश था, वो अरमान को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन आज तक उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अरमान सिंघानिया के केबिन तक जाए। लेकिन आज अरमान के साथ किसी लड़की को देखकर वो काफी हैरान हो गई। उसकी आंखों में आस्था के लिए जलन बढ़ गई थी। उसमें ये जानने की इच्छा बढ़ गई थी कि आखिरकार अरमान सिंघानिया के साथ ये लड़की कौन है, लेकिन सामने से आकर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उसने छुपकर उन सब पर नजर रखनी शुरू कर दी। मॉल में प्रवेश करते ही आस्था, जो डर रही थी, हिम्मत नहीं जुटा पाई कि थोड़ा आगे बढ़ सके। उसने अपना सर झुका रखा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो अलग ही दुनिया में आ गई हो। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस ओर देखे, क्योंकि हर ओर उसे मॉल की खूबसूरती ही दिखाई दे रही थी। मॉल में घुसते ही अरमान ने चारों की ओर देखते हुए कहा, इस लड़की को जो कुछ भी चाहिए उसे शॉपिंग कर दो, मैं तब तक कैफेटेरिया में बैठकर इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा कहकर अरमान लंबे लंबे कदम भरता हुआ वहां से चला गया, लेकिन ध्रुव ने आहान की ओर इशारा किया कि वो कुछ करके अरमान को रोके। आहान जल्दी से अरमान के पास गया और कहने लगा, भाई प्लीज, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हम लोग भाभी को शॉपिंग करा दे, हमें तो कुछ नॉलेज नहीं है, आपको भी हमारे साथ रहना होगा प्लीज। अब जैसे ही आहान ने ये कहा, अरमान उसकी ओर आईब्रो उठाते हुए देखने लगा। आहान जल्दी से बोला, वो भाई, मेरा मतलब ये था कि अगर आप भाभी को शॉपिंग नहीं कराएंगे और दादाजी को इस बात का पता चल गया तो दादाजी नाराज हो सकते हैं, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, और उनका गुस्सा और स्ट्रेस लेना उनके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आहान ने जैसे ही अरमान की कमजोरी का इस्तेमाल किया, वो गुस्से से अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने सर पर मारने लगा और गुस्से से दांत पीसते हुए आहान से बोला, तुम कब से मुझे ब्लैकमेल करने लगे हो, देख रहा हूं मैं, जब से ये लड़की आई है तुम लोगों के कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। ऐसा कहकर अरमान गुस्से से फौरन आस्था के पास आकर खड़ा हो गया। उसने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, चलो मेरे साथ, तुम्हें मैं शॉपिंग करवाता हूँ। वो उसे लेकर जाने लगा। आस्था अपनी नजरों से चारों की ओर देखने लगी, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार अरमान उसे कहाँ लेकर जा रहा है। मिस मलाइका, जो उस वक्त मॉल में मौजूद थी, जैसे ही उसने अरमान के हाथों में आस्था का हाथ देखा, उसके तन बदन में आग लग गई। वो गुस्से से कहने लगी, नहीं मिस्टर अरमान सिन्हानिया, पिछले 5 सालों से मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे चक्कर में न जाने मैंने कितने ही रिश्ते ठुकरा दिए, और कभी किसी को अपनी जिंदगी में मैंने जगह नहीं दी, तुम इस तरह से मुझसे दूर नहीं हो सकते, किसी भी कीमत पर नहीं। इस लड़की की जान मैं अपने हाथों से ले लूंगी, लेकिन तुम्हारे करीब कभी किसी लड़की को आने नहीं दूंगी। मलाइका बड़ी ही खूंखार और खतरनाक लग रही थी। जब अरमान आस्था को लगभग घसीटते हुए कपड़े वाले एरिया की ओर लेकर जाने लगा, आस्था कहने लगी, आप क्या कर रहे हैं अरमान जी, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। वो अपना हाथ छुड़वाने की गुहार लगा रही थी। चारों काफी हद तक हैरान हो गए, वे जल्दी से उधर आ गए और अरमान के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने उसे रोककर कहा, भाई आप ये क्या कर रहे हैं, आप इस तरह से भाभी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, उन्हें दर्द हो रहा होगा, प्लीज उनका हाथ छोड़िए। सुमित और आहान चारों ही अरमान पर गुस्सा करने लगे। अरमान ने चारों की ओर देखते हुए आस्था का हाथ छोड़ दिया और कहने लगा, तुम चारों को आखिरकार हो क्या गया है, जब से ये लड़की आई है मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग इस लड़की की कुछ ज्यादा ही हिमायत कर रहे हो। आकाश थोड़ा आगे आया और अरमान को समझाने लगा, देखो अरमान, इस वक्त हम घर पर नहीं हैं, तो तुम यहाँ बाहर आकर आस्था के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते हो, इस तरह से आस्था का तमाशा नहीं बना सकते। आस्था ने शुक्रगुजार नजरों से आकाश की ओर देखा, मानो वो उसका मन ही मन में शुक्रिया अदा कर रही हो,
कि उसने उसे अरमान से बचा लिया। अरमान कहने लगा, मैंने तुम लोगों से कहा ना, तुम लोगों को जैसे शॉपिंग करनी है तुम लोग कर सकते हो, तब तक मैं कैफेटेरिया में इंतजार कर लेता हूँ, लेकिन तुम लोग मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। ध्रुव बोला, अच्छा ठीक है, हम आपकी बात मान लेंगे। आप एक काम कीजिए, भाभी के लिए केवल एक ड्रेस पसंद कर लीजिए, उसके बाद आप कैफेटेरिया में चले जाइए, उसके बाद बाकी की शॉपिंग भाभी अपने आप कर लेगी। ध्रुव के ये कहकर बात खत्म करने पर अरमान उसकी ओर गुस्से से देखने लगा। ध्रुव और आहान दो ही ऐसे थे जो अरमान से सबसे ज्यादा डरा करते थे। आकाश और सुमित अरमान के हम उम्र थे, उसे थोड़े बड़े थे, इसलिए वे उसके सामने कभी कभी कुछ भी बोल दिया करते थे, लेकिन आज इस तरह से ध्रुव के बोलने पर अरमान उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। लेकिन अरमान के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए अरमान जल्दी से बोला, ठीक है, मैं तुम सबसे बाद में निपट लूंगा, फिलहाल जो भी तुम लोगों का करना है करो, वैसे भी तुम लोगों के चक्कर में मेरा आज का पूरा काम पूरा दिन बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। अरमान ने इतना ही कहा था कि पीछे से एक आवाज आई, गुड आफ्टरनून सर। सबने आवाज का पीछा किया तो सब हैरान हो गए। पीछे कोई और नहीं बल्कि देव खड़ा हुआ था। देव अरमान का पर्सनल सेक्रेटरी था, वो अरमान के भाइयों जैसा ही था। देव के आते ही चारों हैरानी से उसकी ओर देखने लगे, क्योंकि अरमान के चारों दोस्तों से आहान समेत देव की काफी अच्छी बनती थी। देव को देखते ही वे चारों खुशी से उसे गले लगाने लगे। ऐसा लगने लगा था मानो पूरे मॉल में भाइयों का मेला लगा हुआ हो। वे इस तरह मिल रहे थे मानो कितने ही सालों बाद मिले हों। अरमान गुस्से से उन्हें देख रहा था। वो सोच रहा था, कल ही तो ये सब मिले थे, फिर ये इस तरह से यहाँ मिलकर इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं, जाने नहीं मिले कितने साल हो गए हों। अरमान ने नामे अपनी गर्दन हिलागी, जैसे कहना चाह रहा हो कि इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, ये लोग कहीं भी शुरू हो जाते हैं।
देव उन चारों से मिल रहा था, लेकिन साथ ही उसकी निगाहें अपने बॉस पर भी थी, जो उस वक्त गुस्से से सबको घूर रहा था। देव ने ज्यादा बात ना करते हुए तुरंत अरमान के सामने जाकर खड़ा हो गया और कहने लगा, सर ये रहा आपका लैपटॉप और ये आज की मीटिंग की पूरी डिटेल्स, जो कि आपने दिन की जगह रात की रीशेड्यूल कर दी है। चारों ने ये सुना कि अरमान ने अपना दिन का सारा काम रात को रीशेड्यूल कर दिया है, तो उनका मुंह हैरानी के मारे खुला का खुला रह गया। आकाश मन में कहने लगा, काश हम लोगों में भी इतना दिमाग होता तो हम भी आज अपने दिन का सारा काम रात को ही कर लेते यार। चारों एक दूसरे के मन की बात पढ़ ली थी। अरमान उनकी ओर देखते हुए कहने लगा, तुम लोगों को ज्यादा दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे एक मिनट भी बर्बाद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और जल्दी से शॉपिंग करो, जो खरीदना है खरीदो और इस लड़की को जो दिलाना है दिलाओ और फिर फटाफट से चलो। देव की निगाह भी आस्था पर गई। आस्था से जब वो पहली बार मिला था तब उसे आस्था काफी अच्छी लगी थी और उसे आस्था के लिए बुरा भी लग रहा था, क्योंकि आस्था की जिंदगी में अरमान सिंघानिया जैसा बेरहम इंसान आया था। देव अरमान को काफी सालों से अच्छी तरह से जानता था। देव 15 साल का था तब से वो अरमान के साथ था, इसलिए अरमान उसे भी भाई जैसा ही ट्रीट करता था।